एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे शब्द पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसे हम रोज सुनते हैं, जिसकी आकांक्षा रखते हैं, विकास यानी ग्रोथ।
नमस्कार। हाँ, ये शब्द तो हमारी अर्थव्यवस्था, तकनीक, यहाँ तक कि निजी जिंदगी की बातचीत पर भी छाया रहता है। और इसी विकास की पहेली को समझने के लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं वैक्सलाव स्मिल की बेहद महत्वपूर्ण किताब ग्रोथ, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू मेगा सिटीज पर। मैं हूँ आपकी दूसरी साथी इस चर्चा में।
और मैं हूँ आपका पहला साथी। देखिए, ये किताब आज इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ लगातार आर्थिक तरक्की और तकनीकी छलांगों पर बहुत जोर दिया जाता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या यह विकास हमेशा ऐसे ही चलता रह सकता है? क्या इसकी कोई सीमा नहीं है?
बिल्कुल। और स्मिल अपनी किताब में इसी बुनियादी सवाल से जूझते हैं, क्या ये जो अनंत विकास वाला विचार है, ये हकीकत है या सिर्फ एक खतरनाक भ्रम? वो प्रकृति, इतिहास और विज्ञान के नजरिए से इस पर रोशनी डालते हैं जो हमारी कई धारणाओं को, सच कहूं तो, चुनौती देता है।
तो चलिए पहले इस असाधारण लेखक वैक्सलाव स्मिल को थोड़ा जानते हैं। ये कोई आम एकेडमिक नहीं है।
हाँ बिल्कुल नहीं। कनाडा की मैनिटोबा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। स्मिल एक अंतर्विषय यानी इंटरडिसिप्लिनरी विचारक हैं जिनकी विशेषज्ञता कई क्षेत्रों में फैली है, ऊर्जा, पर्यावरण, जनसंख्या, तकनीक, इतिहास,
भोजन उत्पादन, मतलब लिस्ट लंबी है।
हाँ, और उन्होंने 40 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। बिल गेट्स भी उन्हें अपना पसंदीदा लेखक मानते हैं। लेकिन स्मिल की खासियत है उनका कठोर, मतलब बिल्कुल डेटा पर आधारित विश्लेषण। वो किसी विचारधारा या लुभावने नारों के पीछे नहीं भागते, वो तथ्यों और भौतिक दुनिया की वास्तविकताओं पर टिके रहते हैं।
हाँ, उनका मानना है कि आप किसी भी चीज के विकास को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी ऊर्जा और भौतिक जरूरतों को न समझें। कोयला कैसे जला, स्टील कैसे बना, खाना कैसे होगा,
सही बात है।
ये सब विकास की कहानी के असली किरदार हैं, न कि सिर्फ अमूर्त आर्थिक मॉडल। उनका दृष्टिकोण बहुत जमीन से जुड़ा हुआ और व्यावहारिक है।
और उनका जो चेक मूल है और फिर उत्तरी अमेरिका में लंबा अकेडमिक सफर रहा, उससे उन्हें एक अनोखा वैश्विक नजरिया भी मिलता है। वो बड़ी तस्वीर देखने और अलग अलग दिखने वाली चीजों के बीच पैटर्न खोजने में माहिर हैं। इसीलिए ग्रोथ जैसे जटिल विषय पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत है।
तो ये किताब ग्रोथ आखिर कहती क्या है? इसका सार एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार में छुपा है कि प्रकृति से लेकर इंसानी समाज तक हर तरह का विकास एक खास पैटर्न का पालन करता है, जिसे सिग्मोइड कर्व या एस आकार का वक्र कहते हैं।
एस वक्र, ये क्या है?
अच्छा, इसको ऐसे समझे, कोई भी विकास धीमी गति से शुरू होता है, ठीक?
तेजी से बढ़ता है। ये वो दौर है जिससे हम अक्सर हमेशा चलने वाली तरक्की समझ बैठते हैं और फिर अनिवार्य रूप से धीमा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी सीमाओं से टकराता है। ये सीमाएं ऊर्जा की हो सकती हैं, संसाधनों की, जगह की,
या सिस्टम की अपनी आंतरिक जटिलता की भी।
बिल्कुल
बिल्कुल। स्मिल तर्क देते हैं कि कोई भी भौतिक चीज, चाहे वो एक पेड़ हो, एक जानवर, एक शहर या पूरी अर्थव्यवस्था, हमेशा के लिए घातीय एक्सपोनेंशियल रफ्तार से नहीं बढ़ सकती।
ये तो मतलब भौतिकी और जीव विज्ञान का एक बुनियादी नियम है।
हाँ, है ही।
और यही बात उस आधुनिक सोच को सीधी चुनौती देती है जो मानती है कि लगातार असीमित आर्थिक विकास संभव है और जरूरी भी है।
स्मिल इसे एक खतरनाक भ्रम कहते हैं।
जी, किताब हमें एक यात्रा पर ले जाती है, एक कोशिका के विकास से लेकर विशाल शहरों और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक, और हर कदम पर दिखाती है कि ये एस वक्र कैसे काम करता है और इसकी सीमाएं क्यों अटल है। ये सिर्फ विकास की आलोचना नहीं है, बल्कि हमेशा बढ़ते रहने के विचार का एक तरह से वैज्ञानिक विश्लेषण है।
चलिए अब इस विचार को और गहराई से समझते हैं। स्मिल अपनी बात प्रकृति के उदाहरणों से शुरू करते हैं, क्योंकि विकास का मूल खाका तो, सही बात है, वही मिलता है।
हाँ, वो दिखाते हैं कि कैसे एक बैक्टीरिया कॉलोनी, मान लीजिए, पोषक तत्व मिलने पर तेजी से बढ़ती है। लेकिन जैसे ही खाना कम होता है या कह लीजिए कचरा जमा होता है, उसकी बढ़ोतरी धीमी होके रुक जाती है, एक सटीक एस कर्व।
अच्छा, और ये सिर्फ सूक्ष्म जीवों तक सीमित नहीं है?
नहीं नहीं, एक जंगल को देखिए, वो बढ़ता है, घना होता है और फिर एक संतुलन की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। वहां भी विकास एक तरह से रुक सा जाता है। जानवरों का विकास भी ऐसा ही है, जन्म से वयस्क होने तक तेजी से बढ़ना और फिर रुक जाना। हमारा अपना शरीर भी तो इसी एस कर्व का पालन करता है।
यहाँ स्मिल एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, प्रकृति में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी लगातार दोगुनी रफ्तार से बढ़ना एक अस्थायी चरण होता है, स्थायी स्थिति नहीं।
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर थोड़े समय की तेज तरक्की को हमेशा चलने वाला मान लेते हैं ना।
बिल्कुल।
प्रकृति के इन उदाहरणों को देखने के बाद स्मिल यही पैटर्न इंसानी दुनिया में खोजते हैं। सबसे पहले मानव जनसंख्या। हजारों साल तक हमारी आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ी, फिर पिछली दो सदियों में खासकर औद्योगिक क्रांति और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बाद एक विस्फोटक वृद्धि हुई।
हाँ, वो तो जबरदस्त उछाल था।
हाँ, लेकिन अब जन्म दरें दुनिया भर में गिर रही हैं और जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी हो रही है। स्मिल का अनुमान है कि सदी के अंत तक वैश्विक जनसंख्या स्थिर हो सकती है, मतलब एस कर्व का ऊपरी मोड़ आता दिख रहा है।
फिर स्मिल आते हैं इंसानी रचनाओं यानी आर्टिफैक्ट्स पर, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी ऊर्जा प्रणालियां। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, हर प्रमुख ऊर्जा स्रोत के इस्तेमाल का अपना एस कर्व रहा है। धीमी शुरुआत, फिर तेज फैलाव और खपत में बढ़ोतरी,
और अंततः संतृप्ति, सैचुरेशन यानी बाजार में पूरी तरह फैल जाना या फिर नए स्रोतों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाना।
बिल्कुल।
और क्योंकि ऊर्जा ही हर विकास का आधार है, तो ऊर्जा स्रोतों की सीमाएं हमारे विकास की सीमाएं बन जाती हैं।
सही बात है, तकनीक के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम मूर के नियम की बात सुनते थे कि कंप्यूटर चिप की शक्ति हर दो साल में दोगुनी हो जाएगी।
हाँ, काफी चला वो नियम।
चला, कई दशकों तक चला, लेकिन अब स्मिल दिखाते हैं कि ये नियम भी भौतिक सीमाओं जैसे चिप का गर्म होना, क्वांटम प्रभाव, इनके कारण धीमा पड़ रहा है। ये भी एक एस कर्व बना रहा है।
अच्छा,
यानी तकनीकी प्रगति भी हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं बढ़ सकती।
और वे पैटर्न और भी बड़े सिस्टम में दिखता है, जैसे शहर फैलते हैं लेकिन एक सीमा के बाद उनका भौतिक विस्तार धीमा हो जाता है।
हाँ, या कंपनियां अक्सर तेजी से बढ़ती हैं, फिर स्थिर हो जाती हैं और कभी कभी सिकुड़ भी जाती हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण, है ना। बिल्कुल। स्मिल दिखाते हैं कि जब देश तेजी से औद्योगिकरण करते हैं, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान या हाल के दशकों में चीन, उनकी शुरुआती विकास दर बहुत ऊंची होती है, पर जैसे जैसे वे विकसित और अमीर होते जाते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था जटिल होती है और विकास दर अनिवार्य रूप से धीमी हो जाती है। कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था लंबे समय तक 7-8% की रफ्तार से नहीं बढ़ सकती।
और यहीं पर स्मिल GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद की तीखी आलोचना करते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि GDP सिर्फ आर्थिक लेन देन को मापता है, ये नहीं बताता कि लोगों का जीवन बेहतर हुआ या नहीं, या पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा। ये विकास का एक अधूरा और कह सकते हैं भ्रामक पैमाना है।
हाँ, ये तो ऐसा है जैसे एक कार की स्पीड तो देख रहे हैं पर ये नहीं कि गाड़ी खाई की तरफ जा रही है, मंजिल की ओर।
बिल्कुल सही उपमा है। किताब के आखिरी हिस्से में स्मिल इन सभी धागों को एक साथ बुनते हैं। वो जोर देते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोई हवा में तैरती चीज नहीं है, ये पृथ्वी के जीवमंडल बायोस्फीयर का ही एक हिस्सा है और उसी के नियमों और सीमाओं के अधीन है। हमारे सारे संसाधन पृथ्वी से आते हैं और हमारा सारा कचरा यहीं समाता है।
स्मिल 20वीं सदी के मध्य से शुरू हुई ग्रेट एक्सेलरेशन यानी जनसंख्या, ऊर्जा खपत, उत्पादन, यात्रा, प्रदूषण, इन सब में अभूतपूर्व तेजी को देखते हैं।
हाँ, और वो कहते हैं कि ये कोई नया नॉर्मल नहीं था, ये जीवाश्म ईंधनों, कोयला, तेल, गैस की एक सीमित और एकमुष्ट देन पर आधारित हमारी सभ्यता के विकास वक्र का सबसे तेज और शायद सबसे खतरनाक हिस्सा था।
एक पार्टी थी जो अब खत्म हो रही है, ऐसा कुछ।
हाँ, कुछ वैसा ही। तो क्या इसका मतलब है कि भविष्य अंधकारमय है? स्मिल ऐसा नहीं कहते। उनका निष्कर्ष निराशावादी या आशावादी होने के बजाय यथार्थवादी है। वो कहते हैं कि डेटा साफ दिखाता है कि धीमी या शून्य भौतिक वृद्धि का भविष्य अनिवार्य है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम इस बदलाव का प्रबंधन समझदारी और बराबरी से करते हैं,
या फिर संकट, चाहे वो पर्यावरण का हो, संसाधनों का, या सामाजिक, हमें इसके लिए मजबूर करता है।
बिल्कुल।
इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें साफ उभरती हैं। पहली तो ये कि ये एस वक्र सिर्फ एक दिलचस्प पैटर्न नहीं बल्कि एक तरह का सार्वभौमिक नियम है, बैक्टीरिया से लेकर अर्थव्यवस्था तक,
सब कुछ इसी के दायरे में है।
ये सोचना कि हमारी आधुनिक सभ्यता इसका अपवाद है, स्मिल के शब्दों में जादुई सोच है।
दूसरी अहम बात ऊर्जा और भौतिक संसाधनों की केंद्रीय भूमिका है। असली सीमाएं यही हैं। स्मिल बार बार याद दिलाते हैं कि बिना ऊर्जा के विश्लेषण के विकास को समझना नामुमकिन है। हमारी सारी आर्थिक गतिविधियां अंततः ऊर्जा और पदार्थों के रूपांतरण पर ही निर्भर करती हैं।
और तीसरा, जो शायद आज के दौर में सबसे जरूरी है, निरंतर घातीय वृद्धि का भ्रम। ये विचार कि अर्थव्यवस्था या तकनीक हमेशा तेजी से बढ़ती रहेगी न सिर्फ अवास्तविक है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। ये हमें झूठी उम्मीदें देता है और जरूरी बदलावों से रोकता है। अगर हम अपने देश भारत जैसे विकासशील देश के लिए भी देखें तो ये समझना अहम है कि तेज विकास का दौर महत्वपूर्ण है पर यह हमेशा नहीं चलेगा और इसकी दिशा सही होनी चाहिए।
इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी, मात्रा बनाम गुणवत्ता का सवाल। स्मिल जोर देते हैं कि सिर्फ आकार या संख्या बढ़ाना ही विकास नहीं है, असली प्रगति गुणवत्ता, कुशलता और स्थिरता में है। भारत के संदर्भ में सोचें तो क्या सिर्फ GDP का आंकड़ा बढ़ाना काफी है या हमें लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और जीवन की समग्र गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? स्मिल का काम हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करता है।
स्मिल की किताब हमें सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों से भरी है, जैसे उनका ये कहना कि आधुनिक अर्थशास्त्र अक्सर भौतिक वास्तविकता यानी ऊर्जा, सामग्री, जीवमंडल से कट गया है।
हाँ।
हम उन समस्याओं से और ज्यादा विकास करके बाहर नहीं निकल सकते जो विकास ने ही पैदा किए हैं। ये कितनी गहरी बात है। मतलब पर्यावरण की समस्या को और ज्यादा उत्पादन करके हल नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल। या फिर उनका ये कहना कि 20वीं सदी की ग्रेट एक्सेलरेशन कोई नया नॉर्मल नहीं था बल्कि जीवाश्म ईंधन की एकमुश्त विरासत पर आधारित हमारी सभ्यता के विकास वक्र का सबसे तेज हिस्सा था। ये हमें आज की चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करता है। वो एक असाधारण दौर था जो अब ढलान पर है।
और शायद सबसे प्रभावी तर्क ये है, मैं ना आशावादी हूँ न निराशावादी हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ।
हाँ।
डेटा दिखाता है कि धीमी या शून्य भौतिक वृद्धि का भविष्य अनिवार्य है। सवाल बस ये है कि क्या हम इस बदलाव का प्रबंधन समझदारी से करते हैं या ये संकट और पतन के रूप में हम पर थोपा जाता है।
ये सीधे तौर पर यथार्थवाद और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की बात करता है। ये डराता नहीं बल्कि हमें तैयार होने और योजना बनाने के लिए कहता है।
इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो?
तार और ज्यादा की अंधी दौड़ पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है ना? शायद असली खुशी और संतुष्टि सिर्फ चीजें जमा करने में नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता, रिश्तों, स्वास्थ्य और सीखने में है। अपने करियर या निवेश के बारे में सोचते हुए भी ये एस वक्र का सिद्धांत काम आ सकता है। हर चीज का एक शिखर होता है।
और नागरिक के तौर पर यह हमें नेताओं और नीतियों पर ज्यादा यथार्थवादी सवाल पूछने की हिम्मत देता है। जो सिर्फ विकास के बड़े बड़े वादे करते हैं उनसे ये पूछना जरूरी है कि भाई इस विकास की कीमत कौन चुकाएगा? क्या ये पर्यावरण और समाज के लिए टिकाऊ है? क्या विकास का लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रहेगा?
बिल्कुल। व्यवसाय और निवेश के नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है। कंपनियां समझ सकती हैं कि उनका बाजार एस कर्व में कहाँ है, क्या अभी तेजी से बढ़ने का समय है या बाजार परिपक्व हो रहा है और अब स्थिरता और गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। निवेशक भी अतीत की अभूतपूर्व विकास दर को भविष्य में दोहराने की उम्मीद रखने से बच सकते हैं।
और नीति निर्माताओं के लिए तो ये सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। सरकारों को GDP के जुनून से आगे बढ़कर लोगों के कल्याण, पर्यावरण की स्थिरता और सामाजिक समानता जैसे पैमानों को अपनाना होगा।
हाँ, ऊर्जा, शहरी नियोजन, जल प्रबंधन, इन सभी क्षेत्रों में भौतिक सीमाओं को ध्यान में रखकर लंबी अवधि की योजनाएं बनानी होंगी। हमें ऐसे विकास मॉडल चाहिए जो सिर्फ बड़े न हों बल्कि बेहतर और टिकाऊ हों।
तो कुल मिलाकर स्मिल की किताब ग्रोथ से सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि हमें विकास को एक अनंत यात्रा की तरह नहीं बल्कि एक जीवन चक्र वाली प्रक्रिया के रूप में देखना होगा। हमारी सभ्यता भी प्रकृति की हर चीज की तरह एक जीवन चक्र के अधीन है। जन्म, यौवन, परिपक्वता और फिर स्थिरता या रूपांतरण।
मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक और सोचने पर मजबूर करने वाली बात ये थी कि कैसे एक साधारण सा गणितीय पैटर्न, एस वक्र, प्रकृति, तकनीक और समाज के इतने विविध पहलुओं पर लागू होता है। ये दुनिया को देखने का एक एकीकृत नजरिया देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हों, भौतिक नियमों से ऊपर नहीं है।
हाँ, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि 21वीं सदी की असली चुनौती शायद विकास को और तेज करना नहीं, बल्कि उसके अनिवार्य रूप से धीमे होने या स्थिर होने का प्रबंधन बुद्धिमानी, न्याय और शांति से करना है।
ये एक मुश्किल काम है, लेकिन स्मिल के अनुसार यही यथार्थ है जिसका हमें सामना करना है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।